22nd June
1978. Sangachadvam sammadadvam sammomanansi janatam deva bhagam yathapurve sanjanana upasatehe. कल प्रसंग चल रहा था साल रेशम का मुक्ति का और दो दिन से चल रहा है वो दो दिन हो गए हैं। आज मुक्ति के विषय में तीसरा प्रवचन है। चार प्रकार की मुक्ति है, एक तो इस शरीर में जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं, जीवन मुक्त मनुष्य हो जाता है, इस शरीर के रहते हुए ही वह मुक्ति जैसा मोक्ष जैसा सुख अनुभव करने लगता जीवन में। सब प्रकार के राग द्वेष क्लेश दुख आदि से निरुक्त होकर निर्द्वंद होकर के सुख शांति का आनंद अनुभव करने लगता है और ये होता है सन्यासियों को प्राप्त, क्योंकि ब्रह्मचर्य काल में तो विद्या आदि अध्ययन करना होता है 24-25 वर्ष तक। गृहस्थाश्रम में लोक व्यवहार विवाह शादी संतान आदि की उत्पत्ति आदि अनेक कार्य जैसे सारे संसार का भार ही गृहस्थी उठाए हुए होता है। और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम होता है, अपने आप भी वानप्रस्थ तत्व ज्ञान प्राप्त करता है और दूसरों को भी कराता है। ये जो अध्ययन का कार्य है स्कूलों कॉलेजों में पाठशालाओं में गुरुकुलों में विद्यालयों में, ये सब वानप्रस्थियों का ही काम है। तो तीसरे आश्रम में भी वो बात नहीं बनती। चौथा आश्रम रह जाता है संन्यास का। तो इसलिए प्राचीन आचार्यों ने ये आश्रमों की व्यवस्था बनाई थी ताकि इस मनुष्य जीवन में ही सत्य ज्ञान और मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो चौथा आश्रम इन्होंने संन्यास का रखा था, पर कुछ है भी ठीक, संसार के सब कार्यों से निवृत्त होकर के सब धंधे परित्याग कर करके आत्म चिंतन या ब्रह्म चिंतन करना या कुछ उपदेश आदि का कार्य भी करने का प्रचार का भी विधान है, सन्यासी ज्यादा अच्छा कर सकता है, क्यों उसके साथ में झगड़े रगड़े कुछ नहीं होते। ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ वास्तव में सन्यासियों का नहीं, ये वानप्रस्थियों का कार्य कर रहा हूँ, अनाधिकार चेष्टा है। तो अब क्या करें, जो अब समझ आई है ज्ञान आया है अब उसको कैसे दिया जाए, और कोई साधन नहीं, वानप्रस्थ इस प्रकार के तैयार नहीं होते जो इस कार्य को चलाएं। वहां भी वो एक ब्रह्मचारिणी थी, वो भी सन्यासी। अंतिम जो आसन है ये स्वोपकार का होता है या परोपकार का होता है। अगर सत्संग उपदेश आदि से किसी का कल्याण हो जाए तो संन्यास में ये भी होता है। तो चौथा आश्रम जो है ये जीवन मुक्तों जैसा होना चाहिए, हानि लाभ सुख आदि में समानता, आत्म चिंतन ब्रह्म चिंतन ये कार्य होते रहे, निर्द्वंद होकर के विचरता रहे, किसी प्रकार की चिंताएं उसके सिर पर ना रहे। तो इस जीवन में भी चौथी अवस्था को जीवन मुक्त बनाया जा सकता है और मुक्ति का सुख इसी शरीर में भोगा जा सकता है। दूसरा साल्वेशन है सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर को मेरे ख्याल में ईसाई और मुसलमान तो मानते नहीं है, शरीर और आत्मा को मानते हैं। तो सूक्ष्म, अब एक आदमी के मर जाने के पश्चात जब वो कब्र में दफन किया जाता है तो उसके जो धर्माधर्म संस्कार होते हैं वो कहाँ रहते हैं और उनको कौन धारण करके रहता है। आया कि वो रूह भी कब्र में ही दबी रहती है कि निकल करके आकाश में चली जाती है। अगर रूह ही धर्माधर्म पाप पुण्य के संस्कारों को लेकर के कब्र में बैठी रहती है, उस पिंजर के साथ में जो गल सर गया है, हड्डियां कुछ रहेंगी, अगर उसके साथ में ही बैठी रहती है, तब तो फिर उसको कयामत के समय का विधान है। ईसाई और मुसलमानों में जब कयामत इस संसार की परलय होगी तब उन रूहों का फैसला होगा स्वर्ग और नरक का। इन लोगों की विचारधारा तो ये है। और हिंदुओं की विचारधारा ये है, बौद्धों की, कि इसी जन्म के मरने के बाद फैसला हो जाता है जो हमने कर्म किए हैं इस शरीर में, तो इसी के साथ में फैसला होगा, क्योंकि ये पुनर्जन्म की व्यवस्था मानते हैं। ईसाई और मुसलमान पुनर्जन्म की व्यवस्था नहीं मानते। तो ये तो एक प्रकार से पुनर्जन्म नाम की चीज है नहीं, परंतु साल्वेशन जो है वो कयामत के समय में नरक और स्वर्ग का फैसला होता है। तो नरक और स्वर्ग ये भी मानते हैं, स्वर्ग में सब प्रकार के सुख और नरक में दुख। अब पता नहीं उस नरक को कहाँ इन्होंने बताया है, कहाँ है, वो तो यही जानेंगे। पर दो फैसले वहां होते हैं, और हिंदुओं के यहाँ इसी शरीर के छूट जाने पर उसी काल में स्वर्ग का, नरक का, जन्म का, उसका फैसला होता है। तो अंतर इतना है दोनों में। तो उस वक्त जो धर्माधर्म संस्कार, चाहे वो कब्र में लेकर के रहते हैं, शायद यहाँ इन लोगों ने किसी ने इसने क्या नाम शिवा में पढ़ा हो, बाई दिलादी में, इनसे पूछना चाहिए। वो सूक्ष्म शरीर की है जो धर्माधर्म संस्कारों को लेकर के चलता है, जो हमने इस लाइफ के अंदर पाप और पुण्य कर्म किए हैं, वह उनकी गठड़ी बांध करके या उनके संस्कारों को इकट्ठा लेकर के चलता है। और ये क्योंकि कुछ हिंदू पहले तो ये निर्णय कर पाए थे कि ये सारी सृष्टि 12 अरब वर्ष की होती है, चार का ये सृजन, चार की परलय, और दो परलय होने में लगते हैं, दो उत्पत्ति, तो 12 अरब वर्ष का ये सर्कल माना था। आजकल के जो भौतिक विज्ञानवादी साइंसदान हैं, इन्होंने ज्यादा खोज करी है इन हिंदुओं से, इन लोगों से, कि ये चंद्रमा के जो टुकड़े लाए हैं मिट्टी के, उन्होंने इसका बहुत अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट कर करके मशीनें आदि द्वारा, ये कहते हैं कि 4 अरब वर्ष चंद्रमा को उत्पन्न हुए हो गए। और इनके हिसाब से, हिंदुओं के हिसाब से कुल 2.25 अरब वर्ष हुए।
बहुत अंतर है।
तो ये इनकी खोज हिंदुओं से भौतिक में, वह वर्तमान में जो भौतिक विज्ञानवादी है, इनकी खोज, इनकी रिसर्च इन हिंदुओं से ज्यादा गहरी चली गई। और अभी उसका भी नहीं कह सकते, और शायद आगे ना चली जाए और कहीं दूसरे देश के किसी और लोग मंगल ग्रह के या किसी और ग्रह के टुकड़े ले आए,
शुक्र तभी तो जा रहे हैं,
शुक्र के टुकड़े ले आए, क्या पता वो और ज्यादा चल जाए। तो आजकल के भौतिक विज्ञान के क्रम से ये 6 अरब वर्ष हो गए हैं या एक तरह से संसार को बने, या चंद्रमा को, या हमारी पृथ्वी को बने। तो इस हिसाब से ये बन जाता है, इसका दोना हो जाता है, या 12×24 अरब वर्ष का सर्कल बनता है सृष्टि का। अब 24 अरब वर्ष में ये चार 8 अरब वर्ष तो ये माने जाएंगे इसके सृजन काल के, और 8 परलय के 16, और 4 परलय होने में और 4 उत्पत्ति होने में इतने वर्ष लगेंगे इस हिसाब से। तो इस हिसाब से आज अगर मरण हो जाता है और इस में मेरी मुक्ति हुई है तो ये सूक्ष्म शरीर को अभी गोया आठ और दो आठ और चार आठ और दो दस आठ अरब वर्ष और रहना पड़ेगा सूक्ष्म जगत के एटमॉस्फेयर में पंचतन मात्राओं को एटमों को, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की जो आहार और खुराक है एटम है, एटम सूक्ष्म परमाणु जिसको जर्वे कहते हैं, गंध तन मात्रा रस तन मात्रा ये जो छोटे छोटे कण से उड़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर इनका सेवन करते हैं। तो ये आकाश मंडल में रह करके तो छह अरब वर्ष तक ये उस साल्वेशन का सुख भोगेंगे। फिर इसके बाद में क्योंकि अब छह अरब वर्ष तो सृष्टि का उत्पन्न होने में, तो ये पूरे छह वर्ष नहीं भोगेंगे क्योंकि इसके आगे कारण शरीर भी है। पहले स्थूल जगत का विनाश होता है और फिर जाकर के चार अरब वर्ष में सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीरों का विनाश होता है और फिर जाकर के और दो अरब वर्ष में जाकर के कारण शरीर का विनाश होता है और फिर अंत में जाकर कारण शरीर प्रकृति में पहुंचता है। तो दूसरी जो मुक्ति या साल्वेशन होगा ये एक प्रकार से चार अरब वर्ष तक सूक्ष्म जगत में रहेगा, ये स्थूल शरीर नहीं रहता और केवल गंध तन मात्राओं का भोग करता है। उसके बाद आगे जो कारण शरीर है, क्योंकि इस सूक्ष्म शरीर में तो इसकी तरह इंद्रिय वर्तमान है, कारण शरीर में इंद्रिय नहीं, कारण शरीर में चित्त अहंकार सूक्ष्म प्राण और आत्मा ये चार चीजें रहती हैं। और या जिससे ये चित्त बना है महतत्व वो भी साथ में रहता है पांचवा और छठा परमात्मा भी। तो ये छह पदार्थ कारण शरीर में रहते हैं, इंद्रियों के भोग वहां नहीं होते, तो दो अरब वर्ष उसको भी चाहिए। तो उसके पश्चात कारण शरीर की जो मुक्ति रहेगी दो अरब वर्ष तक रहेगी, चार की इनकी रहेगी और इसकी इसी तक रहेगी। इस तरह गोया जब तक महाप्रलय नहीं आएगी तब तक स्थूल शरीर की सूक्ष्म शरीर की और कारण शरीर की मुक्ति रहेगी। अंत में जाकर के जब सृष्टि की सारी प्रलय हो जाती है कोई किसी प्रकार का शरीर नहीं रहता, ये अपने कारण रूप प्रकृति में चले जाते हैं और वो रहेगी इस हिसाब से आठ अरब वर्ष वो रहेगी वो अवस्था। उसमें केवल परमात्मा और प्रकृति रहते हैं, आत्मा ये सूक्ष्म शरीर आदि कोई चीज नहीं है, वो आठ अरब वर्ष तक रहती है। तो आठ अरब वर्ष तक ही वह मोक्ष का भोग मानना पड़ेगा। उसके बाद सब प्राणियों को सब जीवों को जैसे ये परलय में चले गए हैं वैसे उठ उठ करके आना होगा, इस स्थूल जगत में आ जाएंगे। सिवाय उस आठ अरब वर्ष के और कोई मोक्ष के सुख का कोई अवसर नहीं है। और इन शरीरों को तो जैसे वह स्थूल शरीर के का सूक्ष्म शरीर का जब तक सृष्टि की परलय होती चली जाएगी तब तक इस शरीर की तो परलय 150 साल में हो जाएगी, इसकी तो मुक्ति इतनी रहेगी। सूक्ष्म शरीर की परलय दो तीन अरब वर्ष में होगी, कारण शरीर की भी परलय दो अरब वर्ष में होगी, तो इनकी कुछ अरब वर्ष रहती है, इसकी कुछ सैकड़ों रहती है। इस स्थूल शरीर की मुक्ति 100 वर्ष रहती है और इनकी ज्यादा रहती है क्योंकि ये सूक्ष्म जगत है, इस तरह सृष्टि की परलय होती है। और फिर ये सृष्टि प्रकृति लेकर के उन्हीं आत्माओं को उन्हीं शरीरों को उसी तरह उत्पन्न होते चले जाएंगे और इसी तरह स्थूल जगत में आ जाएंगे। इस तरह ये आवागमन बना रहता है, आने का जाने का सर्कल बना रहता है। इन लोगों ने जो हिन्दुओं ने तीन नील, मैंने भी आत्म विज्ञान में लिख मारा इनकी पढ़े पढ़ाए के हिसाब से, अपने चिंतन नहीं करा ज्यादा उस वक्त उस विषय में कितना, क्योंकि मैं तो ये गणित का हिसाब नहीं जानता, तो उस गणित के हिसाब से इन्होंने हिसाब गलत करे। तो इस सृष्टि का इतना आगे क्रम चलता रहेगा, वह परले स्वाभाविक की वो आठ अरब वर्ष तक रहेगी जो काल में हो, उसको चाहे तुम मोक्ष कह लो, चाहे परमात्मा में आत्माओं की लीनता कह लो, चाहे सारा जगत उस प्रकृति में लीन कह लो, दो सत्ताएं उस काल में रह जाती हैं, प्रकृति और परमात्मा, और जीवात्मा सूक्ष्म शरीर आदि नाम के कोई चीज नहीं रहती।
जीवात्मा
एक चेतन सत्ता और एक जड़ सत्ता, एक प्रकृति और एक परमात्मा। जब प्रकृति उत्पन्न होती हुई चल करके चित्तों की अवस्था में आती है, बुद्धियों की अवस्था में आती है, तो वहां बुद्धि और चित्त के देश में उसी परमात्मा की आत्म संज्ञा लोगों ने मान ली है। अणुजीवात्मा सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि अणुजीवात्मा सावैव मानना पड़ेगा। इसमें जो परमात्मा की व्याप्ति दयानंद आदि ने मानी है, तो उसको सावैव मानना पड़ेगा। सावैव हमेशा विकारवान हुआ करता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने वाला होता है, तो उसमें परिवर्तन मानना पड़ेगा, उसमें विकास मानना पड़ेगा। फिर जो सावैव पदार्थ होगी उसका कोई उपादान कारण भी मानना पड़ेगा। तो इन आत्माओं का उपादान कारण कौन है? उपादान कारण कोई सिद्ध होता नहीं, और निरवय भी आत्मा सिद्ध नहीं होते, निरवय एक ही वस्तु होगी। और जीवात्मा सावय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सावय विकारवान और उसका कारण मानना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो ये समझ पाया हूं कि चित्तों के देश में या बुद्धि के देश में वो परमात्मा जब होता है, उसकी जीवात्मा संज्ञा इन लोगों ने रख ली है या मान लिया है। जीवात्मा सावैव गया, सावैव जिनमें गया व्याप्ति बन सके परमात्मा की, सिद्ध नहीं होती।